नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्ये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवास आदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाल्मीकि गिरी संभूता राम सागर गामिनी पुनाति भुवनं पुण्यं रामायणं महानदी चरित्र रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैक अक्षरम् महापातक नाशनम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरोह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलं मनोज्वं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानर्युत्थमुख्यम् श्रीरामदूतं सरसे नमामि। रामं रामनुजं सीतां भरत भरत अनुजं सुग्रीवं वायुसोनं च प्रणमामि पुनः पुनः। जय श्री राम। आज दूसरे दिन श्री वाल्मीकि रामायण के सत्संग में आप सबका श्री प्रभुपाद आध्यात्मिक केंद्र सूरत में स्वागत है। कल हम भगवान श्री रामचंद्र के प्रकट्य के लिए राजाधिराज चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ ऋषि शृंग के द्वारा आयोजित किया और साथ साथ में अपने ऋत्विक गुरुजनों वशिष्ठ वामदेव आदि के सहयोग से अश्वमेध यज्ञ का भी अनुष्ठान करके रखा और उस यज्ञ में आए हुए सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी से रावण और कुंभकर्ण से मुक्ति पाने का रास्ता पूछा और भगवान विष्णु ने प्रकट होके स्वयं अवतार लेने की घोषणा कर दी। और उस समय भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी अब हम अवतार लेंगे लेकिन आप भी सब देवता हमारे सेवा सहयोग के लिए आना। तो ब्रह्मा जी ने सबको कहा देखो मैंने पहले ही जमाई लेते हुए जामवन को उत्पन्न कर दिया है जो भगवान की सेवा में लगेगा। तो इंद्र ने कहा मैं बाली को भेजता हूँ, सूर्य ने कहा मैं मेरे अंश से सुग्रीव को भेजता हूँ, वायुदेव ने कहा मैं हनुमान को भेजता हूँ और जो सब देवताओं के निर्माण करने वाले विश्वकर्मा है उसने कहा मैं नल नील को भेजता हूँ। इस प्रकार से बृहस्पति ने भी और सब ने अपने अपने अंश से और वानरों में और ऋषियों में अपने अंश से भगवान राम की सहायता के लिए सबको अवतार लेने का आदेश कर दिया। और फिर समय आने के ऊपर कल ये चर्चा कर रहे थे कि भगवान श्री रामचंद्र का प्रकट्य, क्योंकि अब तो राज अधिराज के घर में आ रहे हैं तो ऋतु राज जो ऋतुओं का राजा है बसंत ऋतु, और बसंत ऋतु के दो महीने होते हैं चैत्र और वैशाख। तो चैत्र महीना चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के ऋतुराज कुसुमाकर बसंत में भगवान रामचंद्र के प्रकट्य की ऋतु का ये वर्णन है। और चैत्र का मतलब है जहां विचित्र भगवान अद्भुत प्रकट होते हैं और शुक्ल पक्ष में जो सब जगह अंधकार को नाश करने वाले रहेंगे। और कौन सी तिथि भगवान ने स्वीकार की तो वर्णन आता है कि नवमी तिथि। ज्योतिष में चौथ चौदश और नवमी को रिक्ता तिथि कहते हैं, खाली तिथि है, उसमें कोई पूजा पाठ नया अनुष्ठान नहीं होता है। तो नवमी तिथि बहुत दुखी भगवान रामचंद्र के सामने खड़ी हो गई। रामचंद्र ने पूछा कैसे पधारी हैं, कौन है? बोला मैं कहूं क्या, मैं नवमी तिथि हूं और बहुत दुखी हूं। बोला दुखी क्यों है? बोला सब लोग मुझे खाली कहते हैं कि मैं रिक्ता हूं, खाली हूं, कोई अनुष्ठान नहीं होता है। तो भगवान रामचंद्र ने फिर पूछा कि आप सच खाली हैं? बोला हाँ जी सत्य कहती हूँ कि सब लोग मैं कहती हूँ नवमी हूँ तो मुझे निकाल देते हैं, कोई मेरा स्वीकार नहीं करता है, तो मुझे भय तो लग रहा है लेकिन फिर भी आप पूछते हैं तो मैं कहती हूँ मैं हूं तो रिक्ता। बोला बस अगर आप रिक्ता हैं जो सब चीजों से खाली हो उसको हम स्वीकार करते हैं। और भगवान ने जानकी जी की ओर देखा और जानकी जी ने मुस्कुरा के कहा हम दोनों नवमी को स्वीकार करते हैं। तो भगवान श्री राघवेंद्र का प्रकट्य शुक्ल नवमी चैत्र में होता है और शुक्ल नवमी वैशाख में श्री किशोरी जी जानकी का प्रकट्य होता है। तो नामी निहाल नवमी निहाल हो गई। और वैसे जो खाली होता है उसको भगवान अपनाते हैं। वो बांसुरी खाली है तो भगवान कृष्ण के होंठों में भरी हुई बांसुरी से कुछ नहीं होता है। तो जो चीज खाली हो जाए दुनिया के सारे जिसको कहा जाता है उपाधियों का जो परित्याग कर दे वो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो तिथि तो नवमी की है और सूर्य वंश में प्रकट हो रहे हैं तो सूर्य के मध्यकाल में जब सूर्य परिपूर्ण रूप से होता है उस समय और उस दिन को मंगलवार है। मंगलवार है, मंगल भूमि का पुत्र है और सीता माता भूमि से प्रकट होती है। तो यहां भगवान ने अपने साले के दिन को स्वीकार किया अवतार होने के लिए। तो भूमि की पुत्री सीता है तो भूमि का पुत्र मंगल है। तो भगवान ने अपना साले के दिन के ऊपर प्रकट होने का संकल्प कर लिया। और ऐसे लिखा है कि जैसे चंद्रमा प्राची दिशा से प्रकट होता है, ऐसा नहीं कि चंद्रमा को जन्म देने वाली जो प्राची दिशा होती है, लेकिन दिखता है कि इंदु प्राची दिशा से निकलता है। तो ऐसे भगवान का प्रकट्य होता है, जो अजन्मा है उसका प्रकट्य ऐसे कौशल्या के यहां हुआ है नवमी के दिन पे। और बहुत बड़े विद्वानों ने शोध करके सब पुराणों के अंदर से देख के निकाला है कि 24वीं चतुर्युगी में, जैसे भगवान श्री कृष्ण का अवतार 28वीं चतुर्युगी में होता है, तो 24वीं चतुर्युगी के त्रेता युग में कोई 1,85,58,085 साल पहले, अनकरीब इतना समय पहले भगवान रामचंद्र का प्रकट्य हुआ है, ऐसे शास्त्रों से तारीख शोध करके ज्योतिष के आधार पर निकाला है। तो चतुर्युगियों के समय को देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। अब राम जी का प्रकट हुआ थोड़े समय के बाद भरत जी का, और 5 ग्रह सुख बहुत अच्छे स्थान के ऊपर हैं, वो सारा उनकी लगन कुंडली उन सबका वर्णन बहुत सुंदर किया हुआ है भगवान रामचंद्र के प्रकट्य। पुनर्वसु नक्षत्र को भगवान राम ने अपने प्रकट्य के लिए चुना, और पुनर्वसु नक्षत्र का अर्थ होता है जो पुनर्वसा दे, जो उजड़ी हुई जगहों को बसा दे, खोई हुई चीज को वापस मिला दे। तो जो धर्म मर्यादाएं खो गई थी उनको फिर रामचंद्र जी स्थापित करेंगे, इसलिए पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान रामचंद्र का प्रकट्य है। और फिर दशमी के दिन सुमित्रा जी ने 2 लाल को जन्म दिया। अब ये लाल छोटे बालक है, 6ठी का दिन तो माताओं ने किया, 12वें दिन इनके नामकरण संस्कार का जब समय आया तो बहुत सुंदर शोभा बनाया, सभा बनी है नामकरण के लिए। वशिष्ठ जी महाराज के लिए स्वर्ण सिंहासन के ऊपर विराजमान हुए हैं, और अन्य सारे ऋत्विज जो हैं, वामदेव हैं, मार्कंड्य हैं, जाबाली हैं, ये सब विराजमान हुए हैं। महाराज दशरथ सिंहासन के ऊपर विराजमान है, राज सिंहासन पे माताएं अपनी गोद में बालकों को लेके बैठी हैं, और यज्ञ की सारी सामग्री तैयारी है। अब नामकरण 12वें दिन रामचंद्र के नाम करने का, और भगवान श्री चंद्र कृष्ण के राम नामकरण में तो साल लग गया, बहुत समय बीत गया। जब गर्ग ऋषि आया तब नाम किया, और उनका नाम तो गौशाला के अंदर कोई और नहीं था, 2 माताएं और 1 नंद बाबा और 1 गर्ग ऋषि और 2 बच्चे, बस ये नामकरण भगवान का तो छुपा के करना क्या कृष्ण का, लेकिन यहां तो नामकरण संस्कार का इतना बड़ा वैभव है, और सभी तैयार होके यज्ञ की तैयारी करके बैठे हैं कि अब बस महाराज वशिष्ठ इनका नामकरण संस्कार करेंगे। लेकिन वशिष्ठ जी उन बालकों की ओर देख रहे हैं और ऐसे समाधि में भूल गए, तो सब जय जयकार करते हैं तो फिर जाग जाते हैं, तो वशिष्ठ जी क्या सोच रहे हैं? वशिष्ठ जी सोच रहे हैं ब्रह्मा जी का मानसिक पुत्र है वशिष्ठ जी, जो सप्त ऋषियों में एक है, और ब्रह्मा जी ने जब मुझे कहा कि आप पुरोहित बन जाओ रघुवंश और इक्ष्वाकु वंश के, तो मैंने कहा पुरोहिती कोई उत्तम कार्य तो नहीं है पिताजी, मैं तो अपने अग्रज 4 कुमारों की तरह साधु बनना चाहता हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं बेटा, तुम्हारे को ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि गृहस्थ में तुम्हारे गोद में भगवान खेलेंगे, तुमको उनको गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो अब ये कह रहे हैं कि और एक दिन आपकी गोद में वो बैठेंगे और उसको आपके सारे संस्कार करना पड़ेगा, हाथ में खड़िया लेके उनसे उनकी पढ़ाई का कार्य कराना पड़ेगा, आपका इतना सौभाग्य होगा। तो महाराज वशिष्ठ तो उस बड़े प्रेम में, और दशरथ महाराज समझ गए कि इनके उस भाव के साम्राज्य में, तो कौशल्या जी को कहा कि ये छोटा सा लाल गोद में दे दीजिए। और जैसे ही वशिष्ठ जी की गोद में लाला आया है और वशिष्ठ जी उनको देखते हैं और बड़े आनंदित होते हुए और अपने पिता ब्रह्मा जी के वचन को सत्य और सार्थक और गोद में लिए हुए रामचंद्र लाल को कहते हैं, इनका नाम बहुत अद्भुत छोटा है लेकिन ये राम, रमंती योगिनो यस्य आत्मनि, जो योगी जिसमें रमन करते हैं, जो आनंद लेते हैं, ये ऐसे राम है, और ये आनंद कंद राम, इसका नाम बहुत छोटा है लेकिन ये सबको आनंद देने वाले होंगे। आगे जब विश्वामित्र कहते हैं राम का अर्थ क्या है, बोला राक्षसों का मरण इनके हाथों से होगा, इसलिए इसका नाम है राम, राक्षसों का मरण इसके हाथ से होगा, ये ऐसे राम है। और विभीषण जब राम राम करता था तो रावण कहता है तुम यहां राम राम क्यों करते, बोला देखो र से रावण, म से मंदोवरी, मैं तो आप दोनों का नाम ले रहा हूं और किसी का थोड़ी ले रहा हूं। तो लोग अर्थ कुछ भी इसका ऐसे से वैसे कर ले, लेकिन राम आनंद देने वाला नाम है। और भरत की ओर देखते हैं कि ये सबका भरत भरण पोषण करने वाले हैं, इनका नाम भरत है। और इनका नाम भरत इसलिए भी है कि ये राज का भार भी उठाएंगे और तपस्या का भी भार उठाएंगे 14 वर्ष तक। और ये तो भगवान के महान भक्त हैं। और फिर लक्ष्मण के हाथ की रेखा को देखा और चरणों के चिन्ह को देखकर कहा अरे ये तो इसके लक्षण राम के नित्य सेवक के दिख रहे हैं, तो ये लक्ष्मण है और ये तो आदि गुरु है, यही सबको भगवान से मिलाने वाला है। जो भगवान से मिला उस जिसको लक्षित करके भगवान को मिला जाए उसका इसका नाम है। और फिर चौथे लाल को कहते हैं ये तो शत्रुघ्न है। ये आगे चल के श्री राम जी की सेना का महासेनापति बनेगा। और इसके नाम लेने से बाहर के शत्रु क्या, अंदर के शत्रु काम क्रोध लोभ मोह मद नाश हो जाएंगे। ऐसे 4 कुमारों का नामकरण संस्कार किया है। और महाराज दशरथ ने कोटि कोटि गायों का दान किया है, ब्राह्मणों को स्वर्ण दान दिया है। और हरेक बालक अपनी अपनी माता के कक्ष में है। तो जो धा माँ इनको दूध पिलाने वाली जाके देखती है, तो एक दिन कौशल्या के कक्ष में छोटे रामलला सोए हुए हैं, लेकिन उसी के पास में पालने में लक्ष्मण छोटे राम जी के चरणों को चूस रहे हैं। तो उसको आश्चर्य लगा, वो तो दूसरे महल में सुमित्रा के महल से ये लाला आए कहां, यहां कैसे आ गए, जाके देखें सुमित्रा के महल में तो है नहीं, आश्चर्य वो तो छोटा सा बालक यहां कैसे आ गया। और जाके केकई के महल में देखें कि भरत जी के चरणों में शत्रुघ्न सोए हुए हैं, बड़ा आश्चर्य लगा। सीधे गुरु जी के पास गए, बोला गुरु जी, माता जी कहती है गुरु जी बड़ा आश्चर्य मुझे देखने में आया, अब छोटे बच्चे कैसे इतने बड़े दूर महल से एक महल से दूसरे महल में कैसे गए और ऐसे पड़े। अब वशिष्ठ जी ने कहा ये तो गंधर्वी माया है, इसका कैसे निवारण कैसे हो, तो इसका निवारण ये है कि भरत जी के पास शत्रुघ्न को सुला दिया करो और लक्ष्मण के पास राम जी को सुला दिया करो, तो ये इस माया का निवारण हो जाएगा। ये नहीं बताया कि क्यों ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये हमेशा साथ रहने वाले हैं ऐसा इनका भाव है। फिर समय आने के ऊपर ये छोटे बालक थोड़े बड़े हुए हैं, तो इनको पढ़ाने के लिए गुरु के आश्रम में वशिष्ठ जी के पास ले गए हैं। तो वशिष्ठ जी ने दशरथ महाराज को कल हमने कहा था, कहा कि आप महाराज अब जाइए, मैं हम इनका दीक्षा शिक्षा का प्रबंध करते हैं, उनकी परिक्रमा करके प्रणाम किया है। और फिर इन बालकों को एक साल में रामचंद्र और चार बालकों ने एक साल में सारी शिक्षा पूरी कर ली। वैसे भगवान श्री कृष्ण के अवंती नगरी में उज्जैन में जाने की शिक्षा के 64 दिनों में सारे विद्याओं में प्रवीण हो गए, एक साल पूरा हो गया है। तो अब बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकली है वशिष्ठ जी के आश्रम से, 15 साल के हो गए हैं अब ये बालक। और राजकुमारों के लिए स्वर्ण रथ सजे हैं, एक रथ में चक्रवर्ती महाराज दशरथ बैठे हैं और 4 कुमारों के रथ सजे हुए हैं और चारों ओर से सेना है और ये बड़ी शोभा यात्रा आ रही है। तो ऐसे के एक निषाद अपने बेटे को कहते थे राम जी बहुत सुंदर है, बोला मैं दर्शन कहां कर पाऊंगा, बोला वैसे तो महल में रहते हैं वशिष्ठ जी के गुरुकुल में रहते हैं, तो वहां जाके दर्शन कैसे मैं करूं, मैं तो निषाद छोटा सा बालक हूं और कपड़े भी जंगली पा है। उस दिन उनके पिता ने कहा बेटा आज तेरा सौभाग्य है, आज सवारी निकल के आ रही है राघवेंद्र की और चारों लाला गुरु के आश्रम से राजमहल की तरफ आएंगे, आज आपको दर्शन होगा। तो इसके मन में आया मैं दर्शन करूं तो उनको उपहार क्या दूंगा, तो एक बहुत अपने हाथ से मृगशाला का चप्पल बनाया है राम जी के लिए, एक तरकस बांस की लकड़ी का बनाया है, टोकरी के अंदर लेके लाइन में खड़ा है। सब लोग कहां से जाए कैसे जाए, जब राम जी का रथ नजदीक आया है तो कहां से छोटा सा घुस के रथ के ऊपर चढ़ने लगा, वो जो सिपाहियों ने पकड़ा लाठी मारने लगा, लेकिन रामचंद्र एकदम उठे कर नहीं रोको, तो सबको लज्जा आ गई कि भगवान के पास जाने वाले को हम कैसे रोक सकते हैं। राम जी ने उसको आलिंगन करके गले से लगा दिया। और उसके आंखों की आंसू राम जी के पीठ के ऊपर आ रही हैं और राम जी को भी आनंद मिला उनसे और कहा मित्र क्या लाए हो मेरे लिए भेंट, तो कहिए आपके लिए मैंने अपने हाथों से ये चप्पल बनाए हैं, चरण पादुका बनाई है, ये तरकस है और भगवान के तो चरणों में पहले ही मखमली हीरे मोतियों का पहने हुए थे वो उतार के इसके दिए हुए जूते पहने हैं और तरकस अपना सोने का नीचे रख दिया है और ये रखा है। तो दशरथ जी कहते हैं राम लला ये कौन है राम भद्र, बोला ये मेरा मित्र है, बोला आपका मित्र है तो हम इसको उपहार देते हैं, आज से हमने इसको श्रृंगेरपुर का राजा बना दिया, वो आगे चल के निषाद राज बनेगा जो रामचंद्र को यहां देखने का इतना, वो तो भगवान को देखने में इसका मोहता इस ये जैसे वापस घर में शोभा यात्रा पहुंची है, अब चार कुमार पढ़ के घर में आए हैं तो घर में विचार चल रहा है गुरुजनों के बीच में माताजनों के, अब इतने सुंदर चार कुमार हैं इनके लिए चार हमारे को सुंदर कहां बहुएं मिलेंगी, अब ये विचार हो रहा है इतनी देर में संकेत समाचार आया है दरवाजे से के तपोनिष्ठ महर्षि विश्वामित्र दरवाजे के ऊपर पधारे हैं और वशिष्ठ जी ने अपने सारे ऋषि मंडल को कहा और राजा को कहा चलिए उनको स्वागत के लिए हमको जाना है, ये मर्यादा है, वो सब चल के आए हैं विश्वामित्र को बड़े आदर के साथ पांव धुला के हाथ धुला के आसन के ऊपर विराजमान किया है और उसके बाद विश्वामित्र जी पूछते हैं महाराज आपके राज में कुशल मंगल है, गुरुजनों से तो बड़े आनंद से मिले हैं और जब दशरथ महाराज कहते हैं हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसे तपस्वी ऋषि आज यहां पधारे हैं, अब आप बताइए हम आपकी कैसे सेवा करें, तब विश्वामित्र कहते हैं वैसे हमने यहां से बहुत पास में सिद्ध आश्रम है, वो सिद्ध आश्रम अनुमान से अब आजकल बक्सर जहां जगह है ये सिद्ध आश्रम की जगह बिहार में जहां बक्सर है इसको सिद्ध आश्रम मानते हैं और यहां हमने एक यज्ञ का अनुष्ठान करके रखा है और बहुत से ऋषि हमारे संग में है, तो उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए कुछ असुर आते हैं, उसके अंदर मेद रक्त पीप मल मूत्र फेंक देते हैं, सो हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए हम आपके पास आपसे आपका ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र मांगने के लिए आए हैं। महाराज दशरथ कहते हैं वो तो अभी तो 15 साल का बाल है, 16 साल में कवच बांधते हैं, अभी तो वो युद्ध में तो जाने जैसा है ही नहीं महाराज, अब उसको ले जाके आपकी रक्षा कैसे यज्ञ की करेगा, और वो राजीव लोचन है अपने मुख से जो शब्द लिखा है वाल्मीकि ने, राजीव लोचन है वो तो कमल है, ये तो राक्षस रात को आते हैं, कमल तो रात को बंद ही हो जाता है, ये तो रात को सो जाएगा, ये कैसे रात को लड़ेगा ये हमारा छोटा सा बच्चा। तो विश्वामित्र जी कहते हैं महाराज दशरथ आप राम जी को नहीं जानते, बोले मैं नहीं जानता हूं, मेरे घर में पैदा हुआ, मैं उसको पाला पोषा, आज 15 साल का हुआ, 16 साल में प्रवेश करना है, मैं नहीं जानता हूं, आपने अभी तक देखा ही नहीं है, आप कैसे जानते हैं, अभी तो आए नहीं, राम जी तो अंदर हैं। बोला मैं अकेला नहीं जानता हूं, आप केवल पुत्र के रूप में जानते हैं, लेकिन वो कितने पराक्रमी हैं, कितने सत्य वचन हैं, ये मैं जानता हूं और मैं नहीं जानता हूं, ये आपके गुरुदेव वशिष्ठ जानते हैं और केवल गुरुदेव वशिष्ठ नहीं जानते, जो तपोनिष्ठ ऋषि हैं वो सब जानते हैं, वो सब जानते हैं कि ये राम जी जो आपके पुत्र है, बोला नहीं मेरा तन है, ये मेरा आत्मज है, ये तो छोटा बच्चा है, इसको कहां ले जाएंगे महाराज। और दो मुहूर्त के लिए, दो मुहूर्त का होता है 48 मिनट के लिए, महाराज दशरथ तो मूर्छित उब गए और थोड़ी देर के बाद महाराज जा उठे तो कहा राम नहीं दे सकता, इतना राम की प्रति उनकी आसक्ति है कि राम नहीं रहेंगे, फिर कहा कि राम तो बड़ा बेटा है, आप छोटा मांगा होता तो दे दिया होता, क्योंकि राम ले जाएंगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मेरे प्राण निकल जाएंगे तो अंत्येष्टि करने वाला तो बड़ा बेटा चाहिए हो रहेगा, नहीं तो होगा कैसे, ये तो नहीं दे सकता, कह दिया नहीं दे सकता, ये तो धर्म है, आप तो यदु आप तो रघुवंश है, आपका तो वचन की महिमा गाई गई है, बोला महाराज आज धर्म कर्म वचन सब मैं राम के ऊपर से बलिदान करूंगा, राम नहीं दिया जाएगा, ये राम दिए नहीं होता। उस वक्त विश्वामित्र को बाहर की दृष्टि से थोड़ा ऐसे क्रोध आया है कि आप वचन देके धर्म से चुत रहे हैं, चुक रहे हैं, तो हम जैसे आए हैं इन्हीं कदमों से चले जाएंगे। उस वक्त वशिष्ठ जी उठ के खड़े हुए। वशिष्ठ जी का मेरा नाम लिया है कि मैं जानता हूं, तो महाराज से पहले तो कहा कि आप आइए, आपसे थोड़ी बात करनी है। इस बीच में कहते हैं विश्वामित्र जी ने क्रोध के बीच में वशिष्ठ की ओर देखा और आंखों में ऐसे प्रार्थना कर दी कि अब जो ये राम, ये आपकी संपत्ति है, ये निधि आपकी है, अब आप कृपा करके हमारे ऊपर दिलाएंगे तो हमारा कल्याण होगा, लेकिन अब महाराज नहीं करके बैठ गए हैं। तो वशिष्ठ जी समझ गए। वशिष्ठ जी अंदर ले जाके कहें कि महाराज, ये विश्वामित्र इस वक्त इस धरती के ऊपर तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ श्रोमणि है, ये अकेला सबकी रक्षा स्वयं कर सकता है, ये तो आपके बालक का हित करना चाहता है, इसके पास दिव्य अस्त्र शस्त्र जो है वो किसी के पास धरती पे है नहीं, और तपस्या से जो इसने प्राप्त किया है ये सब तो श्रेय देना चाहता है। और फिर कहा कि आप कहते ना, एक शब्द संस्कृत में है बहु प्रकार से, तो बहु प्रकार का अर्थ निकाला है कि ये बहु अस्त्र शस्त्र भी देंगे, और हम जो अब चर्चा कर रहे हैं कि चार लड़कों के लिए लड़कियां कहां से ढूंढेंगे, ये विवाह भी करा के लाएंगे महाराज। अब तो महाराज का सारा विचार बदल गया, बोला ये विवाह भी करा के लाएंगे। बोला यही तो मैं कह रहा हूं कि ये आपके भाग्य से ये घर में ऋषि आए हैं, ऐसा मौका गंवाना नहीं चाहिए। और इसको कहते हैं साधु संत के वचन की इतनी शक्ति होती है कि आदमी 180 डिग्री तक पूरा घूम जाता है, हां का ना हो गया, हां ना का हां हो गया। बोला फिर हमारे राम जी अकेले नहीं जाते हैं, दोनों जाएंगे। राम के साथ लक्ष्मण आ गया और दोनों को दशरथ जी ने कहा, बेटा आप गुरु विश्वामित्र के साथ जाके इनकी सेवा में नियुक्त हो जाइए। और विश्वामित्र को कहा, अब आप के इनके पिता भी आप हैं और माता भी आप हैं, क्योंकि ये छोटे बालक हैं। राम जी ने आते ही वशिष्ठ जी को प्रणाम किया है, वशिष्ठ विश्वामित्र आदि सब ऋषियों को, और फिर प्रणाम करके दशरथ को गुरु जी को कहते हैं, विश्वामित्र जी हम माताओं से आज्ञा लेकर आए। विश्वामित्र फिर परेशान हो गया कि पिताजी से तो मुश्किल से हां करा, ये माता जी कैसे देगी। लेकिन कहा फिर वे मैं अभी आता हूं, तो राम जी ने वचन कह दिया। राम जी कभी दो बार बोलते नहीं, एक बार कह दिया तो कह दिया, आएंगे तो आएंगे, निश्चित हो गए। और माता जी उनको प्रणाम कर गया कि हमारे को पिताजी ने विश्वामित्र के साथ भेजा है। तो माता जी को तो पहले याद है कि जब बालक का हम छठी देख रहे थे तब तो एक छोटा ब्राह्मण कौन था, असल में शंकर जी ब्राह्मण बन के आए थे, कह रहे थे इन बालकों का विवाह तब हो जाएगा जब विश्वामित्र आपके घर इनको मांगने आएंगे। तो उनको तो ये याद था कि ये तो बहुत बड़ा मंगल कार्य है, विश्वामित्र की प्रतीक्षा कर रही थी महात्माएं। बहुत अच्छा, दोनों बालक आज रात को ये तैयारी हो गई। और दूसरे दिन सुबह आगे विश्वामित्र चले हैं, पीछे राम जी पीछे लक्ष्मण, और अयोध्या से विदा होते हैं। और जैसे ही आगे चले हैं सरयू के तट के ऊपर आए हैं, तो भगवान के मन में आया कि माता, हमारे पिता ने तो कहा है कि आपका पिता ये है, माता भी ये है, और हमारे गुरु वशिष्ठ का ये मित्र भी है, तो अभी इसके हृदय में हमारा कोई संबंध तो होना चाहिए ना, अभी तो इसके हृदय में वात्सल्य प्रेम को डालना चाहिए। वैसे कोई भगवान का न गुरु बन सकता है न पिता बन सकता है, भगवान जिसको गुरु में वर्ण करें वो गुरु हो सकता है, भगवान जिसको पिता वर्ण करें वो ही पिता हो सकता है। तो विश्वामित्र के हृदय में वात्सल्य प्रेम को भरा, और विश्वामित्र पीछे देखेंगे, अरे एक आधा घंटा चलते हुए हो गया है, ये तो राजकुमार है, घर में पता नहीं माता जी क्या खिलाती होंगी, अभी तक तो कुछ खाया नहीं है। पूछे मुड़ के देखा तो राम जी का चेहरा थोड़ा सा ऐसे दिखा जैसे कोमल, जैसे कुमलाई गया हो। तो विश्वामित्र का कुछ खाया क्या करेंगे, अब एकदम कहते बेटा तुम ऐसे करो, तत्काल मन में भाव आया, बेटा जल्दी करो, मीठे वचन बोले, मेरे पुत्र राम लक्ष्मण तत्काल आचमन कर लो, और मैं आपको विशेष विद्या, एक बला, एक अति बला नाम की विद्या देता हूं, जिस विद्या का प्रांगण होने के बाद भूख लगती नहीं है, प्यास लगती नहीं है, कैसा भी कोई प्रश्न करे उसका उत्तर तत्काल आ जाता है, और युद्ध भूमि में कभी थकता नहीं है, नींद आती नहीं है और अब दीक्षा दे रहे हैं, अब संबंध स्थापित कर रहे हैं राम लक्ष्मण के साथ। इसलिए कई बार अब जब आते हैं सत्संग में, एक प्रश्न हम पूछते हैं, जब तक भगवान से संबंध नहीं स्थापित हुआ तब तक हमारी भक्ति शुरू ही नहीं होती। भगवान के साथ संबंध होना चाहिए। अब और संबंध तो कथा सुनते सुनते जब तक जागृत हो तब हो, लेकिन एक नित्य संबंध है कि हम सेवक हैं वो स्वामी है, ये संबंध तो कहना चाहिए। हमारे राम जी हमारे हैं, कृष्ण हमारे हैं, वो हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं, ये तो भाव निश्चित रूप से दृढ़ कर लेना चाहिए। तो अब भाव वात्सल्य का आया है, ये दोनों विद्याएं दी हैं और उसके बाद रामचंद्र ये रात को सरयू के किनारे रुके हैं। दूसरे दिन जैसे गंगा सरयू में मिलती है वहां किलकिल ध्वनि हो रही है, रामचंद्र पूछते हैं, गुरुदेव ये आवाज कहां से आ रहा है? बोला बेटा राम भद्र ये सरयू गंगा जी से मिल रही है, इसकी तिमल ध्वनि हो रही है और इसको सरयू ये इसलिए कहते हैं कि ये सरोवर से आती है। बोला कौन से सरोवर से आती है? जो ब्रह्मा जी ने प्रकट किया है मान सरोवर हिमालय में है, और जो ब्रह्मा जी की तपस्या को देखकर भगवान विष्णु के आंखों से अश्रु धाराएं नारायण की गिरी है, उनको इकट्ठा करके ये मानस, ब्रह्मा जी का मानस सरोवर है, उस मानस सरोवर से ये निकलती है, इसलिए इसको सरयू कहती है। इसका मतलब सरोवर से निकलती है और ये यहां आके गंगा में मिलती है और यहां से ये अयोध्या में जाती है और ये और रात को आज वहीं रुके हैं। फिर एक और देश का बीच में वर्णन आता है कि ये कौन सा देश है? बोला ये अनंग देश है, यहां शंकर जी तपस्या करते हुए कामदेव को भस्म कर दिया था और आगे बढ़े हैं तो दो जनपद उजड़े हुए दिखाई दिए। श्री रामचंद्र पूछते हैं गुरुदेव ये क्या स्थान है? और विश्वामित्र कहते हैं बेटा ये मलाद और क्रूश नाम के बहुत बड़े प्रसिद्ध जनपद हुआ करते थे। इसको मलाद इसलिए कहते हैं कि इंद्र ने ब्रह्म हत्या को यहां धोया था, तो मल को धोया था, इसलिए इसका नाम मलाद हो गया। उसने आशीर्वाद दिया था, बड़े जनपद थे, लेकिन आज एक बहुत बड़ी भयानक यक्षिणी थी जो अब राक्षसी हो गई है शराब के कारण, सुनंद की पत्नी है और उसी का बेटा जो है मारीच वो हमारे यज्ञ को विध्वंस करता है और उसका नाम ताटका है। और यहां इस रास्ते से मैं लेके भी इसलिए आया हूं रामचंद्र जी आपको कि इस जनपद में कई ऋषि रहते थे, सबको खा गई, जनपद उजाड़ दिया है, आप इसका उद्धार कीजिए। इस बीच में भाव राज्य में कहते हैं कि रात को पहले दिन सोने के समय विश्वामित्र कहते हैं ये राजकुमार बालक ये दूध के फैन जैसे गदेलों के ऊपर सोते हैं, आज पहली बार भूमि के ऊपर सोएंगे, अब सोएंगे इसको कैसे सुलाएं? तो मृगशाला बिछाई है और उसके ऊपर चादर डाल दी है। अब कहते सोआ कैसे सुलाऊं इसको, कैसे ये घर में सोते हैं, कैसे इसको माता कौशल्या सुलाती होगी? तो भावराज में कौशल्या माता के भाव को धारण करते हैं और देखते हैं कि माँ तो बड़ी लोरी गा के सुनाती है। तो एक तरफ राम जी को सुलाया है सीधे तरफ और उल्टे तरफ लक्ष्मण जी को ऐसे सुना दिया है और उनको कथाएं सुना के, लोरी के भाव में कथाएं सुना के सुलाने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं कपड़े से नीचे न चला जाए, अभी छोटे बालक हैं। और सुबह वैसे राम जी तो पहले उठना चाहिए, मर्यादा है, लेकिन आज राम जी जागे नहीं है और विश्वामित्र सोए नहीं है सारी रात, और सुबह अब कैसे जगाऊं इनको? अब जगाने के लिए माता कैसे जगाती थी? तो ये भाव आता है और फिर कहते हैं राम भद्र अब रात शेष रहेगी। ये अभी भी भगवान को उठाने के लिए आज भी गाते हैं, उसमें पहले कौशल्या का नाम लेते हैं कि कौशल्या जैसे उठाती है ऐसे तो मैं नहीं उठा सकता हूं। कौशल्या का सुप्रजा, कौशल्या सुप्रजा, प्रजा का मतलब पुत्र, सु मतलब तुम, कौशल्या के धन्य कर दिया, अब शेष रात रही है, अब भद्र उठ जाओ। आज भी मंदिरों में भगवान को उठाते हैं, उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वज ऐसे करके सुबह उठाते हैं, तो उसके लिए कुछ गान करना है, तो रामचंद्र के उठाने का आज भी यही है। तो कौशल्या सुप्रजा उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, और जैसे उठे विश्वामित्र कहते हैं आज मेरी जिंदगी की पहली रात अच्छी है जो आपका प्रेम से दर्शन करा के कथा करा के सुलाया है, और आज का दिन ही मेरा मंगलमय है कि उठते ही आपका दर्शन हुआ है। और रामचंद्र कहते हैं आज तो हमारा दिन मंगलमय, उठते ही गुरु जी के चरणों का दर्शन हुआ है और गुरु जी को प्रणाम किया है। गुरु आश्रम में तो ये रोज होता था लेकिन फिर राजमहल में नहीं, आज हमको गुरु चरणों का दर्शन हुआ है, हमारा सौभाग्य है। और अब जब विश्वामित्र जी ने कहा इस ताटका का वध करो, ये यक्षिणी थी अब राक्षसिणी हो गई है और इसको श्राप दिया है ऋषियों ने, ये तो 6 कोस की लंबी चौड़ी है, तो राम जी कुछ उत्तर नहीं दे पाए। क्यों नहीं उत्तर दे पाए? बोला स्त्री का वध कैसे करे, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो विश्वामित्र ने कहा ऐसा पहले नहीं हुआ है इस धरती के ऊपर, एक बार पहले भी इंद्र ने वध किया था एक स्त्री का जो इस पूरी धरती को विनाश करना चाह रही थी। और शुक्राचार्य की माता का वध तो भगवान विष्णु ने अपने हाथ से किया था, तो ऐसा जब भी स्त्री कभी संकट का कारण बनी है तो उसका उद्धार करने में कोई आपत्ति नहीं है। अब आप अपने धनुष के ऊपर प्रतिज्ञा चढ़ाइए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की लीला में भी देखते हैं तो पहले पूतना का उद्धार करने का समय आया है, और रामलीला में पहली ताटका का उद्धार है, और दोनों का एक जैसा वर्णन है कि 6 कोस की बहुत असुरी है और सबका विनाश करने वाली है, और दोनों के उद्धार में सिर्फ एक अंतर है, रामचंद्र ने ताटका का खुली आंखों से उद्धार किया है और कृष्ण ने बंद आंखों से पूतना का उद्धार किया। सिर्फ आंखें भगवान की बंद थी, कृष्ण ने आंखें बंद कर ली थी। बोला आंखें बंद करके क्यों? बोला वो योगी योगेश्वर है, वो तो बंद आंखों से ही सब काम कर लेते हैं, और ये मर्यादा पुरुषोत्तम है तो सब काम देख के समझ के फिर करना चाहिए। तो खुली आंखों से अब जब धनुष के ऊपर प्रतिज्ञा चढ़ाई है और टंकार किया, तो विश्वामित्र तो धनुर्धर बड़े बहुत बड़े राजा रहे हैं, अस्त्र शस्त्र के ज्ञात है, बड़ी प्रशंसा हुई और ताटका सामने आई है भयानक, जैसे कोई काला पर्वत चलता हुआ आ रहा हो। और राम जी ने पहले तो संकोच कर रहे थे लेकिन विश्वामित्र कहने के ऊपर एक बाण से एक बाजू काट दी, दूसरे बाण से दूसरा हाथ काट दिया, फिर जांघें काटी। तो विश्वामित्र ने कहा कि, और फिर लक्ष्मण ने कहा कि मैं तत्काल इसका नाक और कान काट देता हूं, आपको परिचय देता हूं, जब भी नाक कान काटने की जरूरत पड़ेगी इसमें मैं बहुत एक्सपर्ट हूं। तो ताटका के भी नाक और कान दोनों काट दिए हैं। भगवान राम चाहते थे कि भाग जाए तो जान छूट जाए, मारूं कैसे इसको, नहीं मारूं तो अच्छा। तो विश्वामित्र समझ गए कि अभी भी तत्काल इसका उद्धार करो, और राम जी ने फिर एक बाण मारा है, ताटका वहां नीचे गिर पड़ी और उस वक्त विश्वामित्र के हृदय से निकला संतुष्ट अस्मि, मैं संतुष्ट हो गया, बेटा आपने आज मुझे संतुष्ट कर दिया, मैं देखना चाह रहा था कि अगर आप इसको मार पाएंगे तो ही आगे बड़े बड़े असुरों को मार के हमारे यज्ञ की रक्षा कर पाएंगे, आप आज परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और मैं आपसे बहुत संतुष्ट हुआ हूं, अब तत्काल स्नान करके आओ। स्नान करके आके बैठे, बोला रामचंद्र अब जितने अस्त्र शस्त्र मैंने जीवन भर में तपस्या से अर्जित किए हैं आज मैं आपको अर्पण करता हूं। कोई 49 के किसी ऊपर से अस्त्रों का नाम वाल्मीकि रामायण में है, एक एक का नाम के ये काल चक्र है और ये ब्रह्म चक्र बाप, ये वरुण पास है और ये दंड, ये काल दंड है नाम है, और का ये अग्नेय अस्त्र है और ये वायुवान अस्त्र है, ये पर्वत अस्त्र है, तो ये सब अस्त्र शस्त्रों को आवाहन किया है। तो सारे अस्त्र शस्त्र साक्षात मूर्तिमान होके खड़े हो गए हैं और बड़े प्रसन्न हो गए कि आज तक तो हमको जिन्होंने प्राप्त किया है उन्होंने क्रूरता से किसी को मारा है, लेकिन देखो आज हमको ऋषि ने प्राप्त किया है तो आज हमको भगवान को अर्पण कर रहे। अस्त्र शस्त्र बड़े खुश हो गए, आनंदित हो गए कि ऋषि के पास अस्त्र शस्त्र गए तो किसी को मारने के काम में नहीं आए लेकिन भगवान को अर्पण करने के काम आए। आज तो विश्वामित्र ने कहा जो कुछ मेरा है सब कुछ अर्पण कर रहा हूं राम जी को। और जब ये सारे अस्त्र शस्त्र प्रसन्न होकर राम जी के सामने खड़े हो गए, राम जी ने उनका स्वागत करते हुए कहा आप सबका स्वागत है, आप सब मेरे मन में बस जाओ, अब जहां से आए हो वहां जाके विराजमान हो, जब आपका आवाहन करूं तब प्रकट होकर सेवा का कार्य कर लेना। सारे अस्त्र शस्त्र विश्वामित्र ने राम जी को दे दिए, और यहां से आगे चले हैं तो सिद्ध आश्रम के पास बहुत सुंदर आश्रम दिखा और कहते हैं कि ये राम भद्र लक्ष्मण ये हमारा सिद्ध आश्रम है। इतनी देर में अंदर से विश्वामित्र के सारे शिष्यगण बाहर आए और गुरुजन का बड़ा स्वागत किया है। एक सीधे हाथ में लक्ष्मण को राम जी को पकड़ा है, उल्टे हाथ में लक्ष्मण को, और दोनों को अंदर ले गए हैं और दोनों का आतिथ्य सत्कार कराया है और सबको परिचय दिया है। अब राम जी कहते हैं गुरुदेव आप जितना जल्दी हो दीक्षित होकर यज्ञ का आरंभ कर लीजिए। ऐसे इतना कह के रात को विश्राम किया। दूसरे दिन सुबह विश्वामित्र जी ने अपने सारे और शिष्यों के साथ यज्ञ का अनुष्ठान किया है। ये यज्ञ 6 दिन चलना है और अब 6 दिन के लिए राम और लक्ष्मण सोए नहीं है, दिन रात जागे हैं और सत्रक हाथ में बाण लिया है, धनुष लिया है और धनुष देख रहे हैं यज्ञ की रक्षा करने के लिए। 5 दिन पूरे हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। 6ठे दिन हुआ तो पहली बार राम जी ने एक शब्द कह दिया आज सुमित्रा नंदन सावधान रहना है। 5 दिन नहीं सोए हैं, आज निश्चित रूप से निशाचर आएंगे, राक्षस आएंगे और कहीं ऐसा नहीं है झपकी आ जाए। और इसको तो लक्ष्मण ने महामंत्र मान के समझ लिया कि आज हमको रामचंद्र ने मंत्र दिया है कि अब कभी सोना नहीं है, कभी असावधान नहीं रहना है, सदा सचेत रहना है। एक बार जो अच्छे सेवक होते हैं ना, जैसे हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती की जीवन में देखते हैं कि अब आम की सीजन है, 5 साल के छोटे बच्चे थे, आम घर में आए और आम भगवान को भोग नहीं लगे और उठा के खा लिया बच्चे ने, तो भक्ति विनोद ठाकुर उनके पिता ने कहा कि आपने भगवान को भोग से पहले खा लिया, ये तो अपराध हो गया, ये तो निवेदित हुआ ही नहीं, आपने अमन्य खा लिया, बगैर अर्पण किए के खा लिया। उस एक शब्द को उनने आजीवन पक्का किया और पूरे जीवन में आम नहीं खाया, कोई आम उनको देता था कहता मैं अपराधी हूं। इसको कहते हैं समझदार बच्चा। अब लक्ष्मण ने जो एक बात रामचंद्र ने कही आजीवन इसको पक्का करके रख लिया। तो ऐसे जो 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 अच्छे साधक होते हैं वो एक बार कहने से जीवन भर उस चीज को पक्का कर लेते हैं, उसमें कभी थोड़ा रंच मात्र तिल मात्र भी उसमें प्रमाद नहीं करते हैं। अब तो मारीच और सुबाहु बहुत बड़े समूह के साथ यज्ञ को विध्वंस करने के लिए आए हैं। राम जी ने एक मानव नाम का बाण है जो मनु महाराज ने तपस्या करके प्रकट किया था। ये बाण मारता नहीं है लेकिन दूर जाके फेंकता है। उसका मारीच के ऊपर अनुसंधान किया और मारीच की छाती को मानव बाण लगा और वो बाण लेकर मारीच को 100 योजन दूर हिंद महासागर में जाके गिरा दिया। वैसे मारीच उसको कहते हैं जो देखने में एक आए और हो नहीं जो चीज, मृग तृष्णा मारीच को कहते हैं। तो ये मृग तृष्णा रूपी राक्षस था जो धोखे में रखने वाला था, भगवान ने इसको दूर फेंक दिया। कहते हैं जहां ये मारीच गिरा उस स्थान के ऊपर छोटा सा समुद्र में टापू बन गया, उसका नाम मारीच से घूमते घूमते आजकल मॉरिशस हो गया। तो मारीच जाके मॉरिशस में गिरा, हिंद महासागर में मॉरिशस है। अभी भी मॉरिशस में सब घरों के अंदर हनुमान जी का मंदिर है, पता नहीं उनको डर है कि मारीच कहीं यहीं पड़ा ना हो आ न जाए, तो वहां हनुमान जी सब घरों के अंदर विराजमान है। अब दूसरा अग्नेय बाण से सुबाहु का तो भगवान ने वहीं विनाश कर दिया, उसका तो उद्धार हो गया। सुबाहु का मतलब जिसकी भगवान ने अच्छी अच्छी बाहें दी हैं लेकिन कोई सेवा न करे और दूसरों को दुख पहुंचाए, गधा मजूरी करे लेकिन कोई सेवा न करे, उसको सुबाहु बोलते हैं। अच्छी बाजू के बाद भी बेकार हो, किसी को किसी का सहायता न करें और दुख दे, तो उसका उधार किया है। असुरों का संहार बाकी लक्ष्मण ने सबका कर दिया है। अब यज्ञ पूरा हुआ है तो आज प्रसन्न होकर कहते हैं विश्वामित्र परितुष्ट अस्मि, पहले कहा था संतुष्ट, आज कहते हैं मैं परितुष्ट हो गया। आज ब्रह्म ऋषियों के यज्ञ को आपने विध्वंस असुरों से रक्षा कर ली है। रात को विश्राम किया और सुबह राम जी कहते हैं हम दशरथ नंदन आपको नहीं बोलते, हम आपके किंकर हैं। राम जी कहते हैं हम आपके किंकर हैं, आज्ञा कीजिए अब क्या करें। किंकर शब्द का अर्थ होता है किम करूं थी, क्या करूं, मतलब आगा नौकर नहीं होता है, आज्ञा दीजिए क्या करूं, किंग करो, किम करो थी किंकर, क्या करूं। तो विश्वामित्र ने कहा कि शिक्षा तो वशिष्ठ जी के लेके आ गए, अस्त्र शस्त्र का तो हमने इनको दे दिया जो हमको देना था, अब इनके जीवन में माधुर्य का भी रस भर देना चाहिए। तो अब सीधा तो इनको नहीं कह सकते हैं, कहते आप पूछते हैं कि क्या हम आदेश करें, तो हमारे पास निमंत्रण आया हुआ है महाराज जनक का मिथिला से, वहां एक बहुत बड़ा धनुष यज्ञ हो रहा है और उनके पास एक अनुपम धनुष है, क्या आप उस धनुष को देखना चाहोगे? और आज तो आपने ब्रह्म ऋषियों के यज्ञ की रक्षा की, तो क्या आप क्षत्रिय राज ऋषियों के यज्ञ की रक्षा करेंगे? वहां भी धनुष यज्ञ हो रहा है, तो आप हमारे साथ चलेंगे? तो रामचंद्र थोड़ा सा, और फिर ये भी कहा वहां सारे पूरे भारतवर्ष से राज ऋषि राजकुमारों को निमंत्रण दिया गया है। तो रामचंद्र जी थोड़े से शांत रहे, विश्वामित्र समझ गए कि रामचंद्र मन में सोच रहे हैं तो हम भी तो राजकुमार हैं अयोध्या के, दशरथ के राजा, तो हमको निमंत्रण नहीं है, हम कैसे जाएं? तो गुरु जी कहते हैं बेटा गुरु जी को निमंत्रण आ गया है तो पूरा शिष्य मंडली साथ जाएगी, अकेला नहीं जाएगा, आप हमारे संग जाएंगे और आपको धनुष देखना है। और तो राम जी हां कर दिया, बच्चों को शौक कौतूहल था, और ये सारी विश्वामित्र की ऋषि मंडली वहां से चली है, और आगे चली है तो स्वर्ण भद्र नदी के तट के ऊपर आके जब पहुंचे हैं, रात को रुके हैं, तो रामचंद्र ने कहा ये कौन सा स्थान है? तब विश्वामित्र को अपने पूर्वजों की याद आती है, बोला ये स्थान, यहां हमारे पूर्वज महाराज कुश रहते थे, उसके पुत्र कुशनाभ हुए और कुशनाभ के पुत्र मेरे पिता गाधी हुए, और ये हमारा राज था पुराना, और अपनी उत्पत्ति की फिर कथा बताते हैं और कैसे मेरी उत्पत्ति हुई। ये कथा हमारे भागवत के नवे स्कंद में भी ऐसे की ऐसे है। महाराज गाधी को एक पुत्री थी सत्यवती, उसके विवाह के लिए रीचक ऋषि आया, तो रीचक ऋषि ने कहा महाराज आपकी पुत्री से विवाह करना है। महाराज ने कहा ये ऋषि कैसे पालेगा राजा की पुत्री को? तो कहा कि काले कान वाले 100 घोड़े लेके आओ तो आपसे इस पुत्री का विवाह करेंगे। अब 100 घोड़े काले कान वाला एक भी नहीं मिलता, एक कान काला हो, लेकिन रीचक ऋषि वरुण लोक में चला गया और 100 घोड़े लाके दे दिए, तो सत्यवती से विवाह हो गया। एक दिन गाधी की पत्नी अपनी बेटी के पास गई और महाराज ऋचक की सेवा करके बेटी ने बड़ी प्रसन्न किया। ऋषि ने कहा क्या चाहिए? बोला मैं मेरी माता से पूछूंगी जैसे जो मांगेगी। माता ने कहा आप कहिए कि एक आपको भाई दे दे, एक आपको पुत्र दे दे। तो उसने कहा कि मेरी मां ने तो कहा है कि एक मुझे पुत्र चाहिए और एक मुझे भाई चाहिए, मेरी माता को पुत्र होना चाहिए। तो ऋषि ऋचक ने गाधी की पत्नी के लिए क्षत्रि का आवाहन किया कि जो बहुत बड़ा राज ऋषि क्षत्रि बने, जिसमें भगवान विष्णु का आवेश हो, जो राजा बने, और अपनी पत्नी के लिए ब्रह्म तेज का आवाहन हुआ कि बड़ा ब्राह्मण बने। अब ये दोनों इनको चारू दे दिए, लेकिन मां से बेटी कहती है कि बेटी ये आपका है, ये मेरा है। तो बोला बेटी ऐसा हो सकता है कि आपके लिए अच्छा बनाए, आप तो साधु ब्राह्मण हो, आपको क्या करोगी, हमको तो राज चलाना है, ये आप वाला मेरे को दे दो। बदली कर दिया, ये जो बदली हो गया, पी भी लिया, और ऋषि ऋचक ने कहा कि क्या किया, पान कर लिया? बोला हाँ कर लिया। बोला कर लिया कैसे, बदली तो नहीं किया? बोला मां ने कहा मैंने उसको दे दिया। बोला बहुत बड़ा ये तो ये अनिष्ट हो गया, अब ऐसा होगा कि तेरे घर में जो पुत्र होगा वो क्षत्रिय कुरूर हो जाएगा। बोला मुझे नहीं चाहिए ऐसा क्षत्रिय कुरूर। फिर तुम माता के कहने के ऊपर कहा है तुम्हारी गलती नहीं है, तुम मात्र भक्त हो तो इतना कर सकते हैं, तेरा पुत्र तो बहुत शांत होगा ब्राह्मण, लेकिन तेरा पोता फिर ये जो अंश है क्षत्रिय वाला ये तेरे पोते में जाएगा। तो फिर आगे ऋचक के घर में जमदग्नि हुआ, वो तो बड़ा शांत था, लेकिन जमदग्नि का जो पुत्र हुआ वो परशुराम हुआ, जो हुआ तो ब्राह्मण के घर में पैदा लेकिन परसा लेकर क्षत्रियों का 21 बार संहार किया था। और दूसरे तरफ गाधी के घर में पैदा बोलते विश्वामित्र मैं हुआ था राजा, लेकिन फिर राजा से ब्रह्म ऋषि कैसे बना वो अपनी थोड़ी सी कथा संक्षेप में बता दी। कि वशिष्ठ के पास कैसे वो सेना के साथ गए थे और उनके पास एक शबला नाम की नंदनी गाय थी जिसने बड़ा आतिथ्य किया और उस गाय को लेने के लिए विश्वामित्र ने बहुत जोर लगाया और वशिष्ठ जी ने कहा कि गाय तो ब्राह्मणों का धन है और गाय का क्या, आप गाय की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, न गाय की कीमत नहीं लगाई जा सकती है, ये तो ब्राह्मणों का धन है और इससे यज्ञ होता है तभी संसार संतुष्ट होता है, देव संतुष्ट होते हैं, भगवान की संतुष्टि होती है, तो नहीं दोगे तो हम लेके चले जाएंगे। वो जब लेने लगा तो गाय ने कहा महाराज आप हमारा परित्याग कर रहे हो, वशिष्ठ जी बोले नहीं जबरदस्त ले जा रही है और गाय ने अपनी सेना से फिर विश्वामित्र को परास्त किया। विश्वामित्र घर राजा गए राज में और बहुत बड़ी तपस्या करके ब्रह्मस्त्र तक लाए लेकिन वशिष्ठ ने अपना ब्रह्म दंड रख दिया, ब्रह्मस्त्र गिर पड़ा। तब विश्वामित्र कहते धिक्कार है क्षत्रिय के बल को, ब्राह्मण का बल ही बल होता है, राजपाट अपने बच्चों को दे दिया और विश्वामित्र तपस्या करने चले गए और तपस्या के बाद ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी। तो इतना बड़ा तपोनिष्ठ है ये विश्वामित्र ऋषि। अब यहां से आगे रात को उधर रहे हैं, दूसरे दिन आगे चले हैं तो गंगा जी को पार करने का जगह है उसको राम रेखा कहते हैं, वहां राम जी विश्वामित्र के संग गंगा को पार किया है। उधर राम जी ने गंगा के अवतार की कथा पूछी है और विश्वामित्र ने बहुत लंबा वाल्मीकि रामायण में गंगा के अवतरण की कथा है। जैसे हम जानते हैं कि हिमालय की पत्नी का नाम मेनका है और उसकी एक पुत्री पार्वती है और दूसरी पुत्री गंगा है और ये दूसरी पुत्री उनकी गंगा है, ऐसे वाल्मीकि रामायण में उसका वर्णन है। और आगे चल के इस गंगा के अवतार के लिए महाराज सगर जो सूर्य वंश का है कहते हैं विश्वामित्र आपके पूर्वज महाराज सगर उसकी दो पत्नियां थी, एक तो गरुड़ की बहन सम्मति थी उससे 60,000 पुत्र थे, एक केसिनी थी उसका एक पुत्र था अंजुमंस। तो अश्वमेध यज्ञ 99 हो गए, 100 यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा के कपिल के आश्रम में बांध दिया और 60,000 पुत्र ये खोदते खोदते गए तो सागर बन गए लेकिन घोड़ा नहीं मिला, कपिल देव के वहां घोड़ा दिखा, कपिल देव के ऊपर अपराध रूपी दृष्टि से देखा, आक्रमण करना चाहा, कपिल देव के आंख खुली, 60,000 सगर के पुत्र भस्म हो गए। अंजसमंस तो राज लेने को तैयार नहीं था, उनका पुत्र अंशुमान उन्होंने घोड़े को देखा, कपिल देव को प्रार्थना की, कपिल देव ने कहा बेटा तुम्हारे ये पूर्वज अपने ही अपराध से भस्म हुए हैं, बोला घोड़ा तो ले जाऊं लेकिन इनका उद्धार कैसे होगा, गंगा अगर धरती के ऊपर उतर के आ जाएगी तो आपके पूर्वजों का उद्धार होगा। अंशुमान जी वापस आए, घोड़ा लाए, सगर का यज्ञ पूरा हुआ, अंशुमान राजपाट अपने बेटे दिलीप को देकर तपस्या करने गए, गंगा नहीं आई। दिलीप महाराज राजपाट छोड़ के गए, तपस्या किया, गंगा नहीं आई। दिलीप का बेटा भागीरथ है, उसने कहा क्यों गंगा नहीं आई, दो दो पीढ़ी की तपस्या से, पहले राजभोग के फिर तपस्या करने जाते थे, मैं ऐसे नहीं करता हूं। अरे मेरे मंत्रियों आप राज की देखभाल करना, पहले मैं गोकर्ण नाम के स्थान पे हिमालय में जाके तपस्या करता हूं, जब गंगा को धरती में लाऊंगा और अपने पूर्वजों का उद्धार करूंगा उसके बाद मैं राज करूंगा। तो भागीरथ जी महाराज ने तपस्या की है और गंगा देवी प्रकट होकर कहती है भागीरथ आपकी तीन पीढ़ियों की तपस्या से मैं तो संतुष्ट हूं लेकिन मैं आऊंगी देव लोक से तो मेरे वेग को कौन सहेगा, मैं तो पाताल में चली जाऊंगी, आपका काम नहीं होगा और बहुत पापी लोग मुझ में नहाएंगे तो मैं पाप कहां धोऊंगी। तो गंगा फिर चली गई और भागीरथ ने भगवान शंकर को प्रश्न किया, भोलेनाथ ने कहा कि मैं उनके वेग को सह लूंगा और ऋषियों ने कहा आप बता दीजिए गंगा देवी को कि ऋषि आप में स्नान करके आपके पाप को धो लेंगे और ऋषियों को पाप इसलिए नहीं लगेगा कि सबके पाप धोने वाले हरि उनके हृदय में सदा रहते हैं, तो पाप हरने वाला हरि जिसके हृदय में उसको पाप कैसा लगेगा, उनको डर नहीं लगेगा तो आपके अंदर नहाने में और आपका पाप वो धो देंगे। अब गंगा जी ने फिर आह्वान किया है और शंकर जी के जटाओं के अंदर जैसे गंगा आई है, गंगा को डर था कि मेरे वेग से कहीं शंकर ही पाताल में न चले जाएं, लेकिन शंकर जी को तो ऐसा भाव आया कि इन जटाओं में गंगा को थोड़ी देर रोक लेते हैं। अब गंगा नीचे नहीं उतरे, भागीरथ ने कहा हे भोलेनाथ अब जटाओं में रखने के लिए नहीं है गंगाधर जी महाराज, अब कृपा करके आप इसको उतारिए। तब गंगा नीचे उतरी है और जहां से भागीरथ का रथ चला है उसके पीछे आई है, उसको गंगा कहते हैं। खुदाई की हुई रास्ते से नहीं आई है, भागीरथ के रथ के पीछे जो रास्ता बना है उसको गंगा कहते हैं। तो गंगा फिर शंकर की जटाओं से पांच धाराओं में नीचे उतरी है, वो अलकनंदा आदि उसकी धाराएं हैं, उसका नाम पांच धाराएं हैं, और वहां से फिर ऐसे गंगा के अवतरण की कथा बताई है। और गंगा का रात उधर स्नान किया है, किसी भी पवित्र नदी को जब पार करें तो उसमें स्नान निश्चित रूप से करना चाहिए, ये सिद्धांत है शास्त्र का, ऐसे बहुत से महात्माओं का मत है कि किसी की नदी को ऐसे लांग के नहीं जाना चाहिए, रुक के वहां स्नान करने जाना चाहिए, अभी समय नहीं है, और संगम कहीं हो तो निश्चित रूप से स्नान करना चाहिए। पवित्र स्थानों का स्नान सौभाग्य से प्राप्त होता है, तो यहां स्नान किया है और यहां से आगे चले हैं तो अब उपवन में पहुंचे हैं मिथिला के। तो उस उपवन को देख के उजड़ा हुआ राम जी पूछते हैं कि ये तो बहुत सुंदर कोई आश्रम था गुरुदेव, एक कौन सा स्थान है? विश्वामित्र कहते हैं राम भद्र, ये गौतम ऋषि का आश्रम था, बहुत बड़ा, किसी समय में ये सुंदर स्थान था, बस एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी ने एक बहुत सुंदर स्त्री को प्रकट किया और फिर उस स्त्री को देख के सारा देवता उसके ऊपर लालायित हो गए, सब विवाह करना चाह रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, मैं इसको धरोहर करके रख के आता हूं गौतम ऋषि के पास। तो गौतम ऋषि ने उसको संभाल के रखा, बड़े प्रश्न होके गौतम ने कहा, गौतम ऋषि को ब्रह्मा जी ने कहा इससे आप विवाह कर लो, और उसका नाम अहिल्या था, और अहिल्या और गौतम यहां बड़े आनंद से रहते थे। एक दिन इंद्र के मन में पुराना उनके साथ जो देखा था प्रेम का भाव था, इंद्र गौतम का रूप धारण करके आया जिस वक्त गौतम नहाने गए थे, और अहिल्या ने इंद्र को पहचाना या नहीं पहचाना ये तो सूचित नहीं हो रहा है श्लोकों से, लेकिन फिर भी ऐसे माना जाता है कि पहचाना। और इंद्र फिर उसी वेश में वहां से जा रहे थे और सामने से गौतम ने देख लिया, कहा कपट करने आए थे कपटी, और इंद्र को शराप दे दिया, नपुंसक बन जाओ। और वैसे इंद्र सारे देवताओं को शराप है, किसी देवता को अपनी स्त्री से कोई पुत्र है ही नहीं आज तक, किसी देवता के पुत्र का कहीं वर्णन मिलता है ही नहीं, और अहिल्या को भी शराप देगा तू पत्थर बन जा। वैसे अहिल्या शब्द का अर्थ है अहनी न दृश्यति, अहनी लियते, दिन में जो दिखाई न दे वो अहिल्या, दिन में दिखाई नहीं देती है। और यहां जब ये बात हुई और ये कथा भी सुनी, फिर भी रामचंद्र के मन में उस ब्राह्मणी के प्रति बहुत बड़ा आदर भाव था, और गुरु जी के कहने के ऊपर उनको चरण स्पर्श करने के लिए आगे बढ़े हैं, लेकिन उनके चरण से उड़ी हुई धूली जैसे लगी है उस पत्थर को, वो पत्थर से अहिल्या प्रकट हो गई, और अहिल्या ने जैसे रामचंद्र को देखा है कि उनकी कृपा से प्रकट हुई है, रामचंद्र की पूजा की है, लक्ष्मण की पूजा की है, तब तो ऋषि गौतम भी हिमालय से वहां प्रकट हो गए हैं, दोनों ने मिलकर इनकी पूजा की है, आज फिर अहिल्या को गौतम ने स्वीकार कर दिया है। ये अहिल्या का उद्धार करने के बाद जनकपुर के बाहर पहुंचे हैं, ये समाचार जैसे महाराज जनक के पास पहुंचा है, महाराज जनक अपने ऋत्विक सतानंद जो गौतम ऋषि का बड़ा पुत्र है ज्येष्ठ, उसको और मंत्रिमंडल को लेके विश्वामित्र के स्वागत के लिए आए हैं, उपवन में बहुत सुंदर स्थान दिया है। दोनों बालकों को देखकर महाराज जनक आश्चर्यजनक होकर कहते हैं ये तो आंखों का उत्सव महाराज, ऋषि कुमार तो नहीं दिख रहे, आपके पास आपको ये कहां से मिले, इतने सुंदर इनका दर्शन है और हाथों के ऊपर प्रतिज्ञा के निशान है, ये तो क्षत्रिय बालक लग रहे हैं। उनको देख के वात्सल्य का हृदय में भाव प्रकट हुआ है। विश्वामित्र कहते हैं ये चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, और ये हमारे यज्ञ के अंदर बड़े बड़े महाअसुरों का वध करके हमारे यज्ञ की ब्रह्म यज्ञ की रक्षा करके आए हैं और हमारे संग आए हैं, इनको आपके यहां जो धनुष है उसको देखने की बहुत इच्छा है, रात को वहां विश्राम किया है। और वाल्मीकि रामायण में वाटिका के अंदर सीता के फूल चुनते हुए राम जी के दर्शन का वर्णन, वाल्मीकि रामायण में इस वर्णन ये नहीं है, दूसरे दिन सभा के अंदर गए हैं तो विश्वामित्र ने कहा है, महाराज दशरथ आपके धनुष को देखना, इन बच्चों का बहुत, ये हमारे दशरथ कुमार हमारे शिष्य आपके धनुष को देखना चाहते हैं। महाराज दशरथ कहते हैं धनुष की कथा तो सुन लो, हमारे पूर्वज महाराज देवव्रत को ये भगवान शंकर ने धनुष रखने के लिए दिया था। ये दो और धनुष एक समय विश्वकर्मा ने बनाए थे, एक भगवान विष्णु के लिए बनाया था, एक भगवान शंकर के लिए बनाया था। और इन दोनों को कोतूहल इंद्र और नारद के बीच में, इंद्र ने कहा कि नहीं, हमारे शंकर जी महादेव हैं, और नारद ने नहीं, नहीं हमारे भगवान विष्णु के विष्णु आराध्य हैं। तो बोले दोनों को आपस में लड़ा के देखते हैं। तो उनके लिए शंकर जी के लिए विश्वकर्मा ने एक धनुष बनाया, तैयार हो गए। शंकर जी को कहा, शंकर जी ने कहा जी वो तो हमारा आराध्य है। बोले नहीं, हमारी इच्छा है। बोले तुम्हारी इच्छा है तो देखो ये भी लीला। और विष्णु जी आए तो बोले ये आपका सारंग धनुष नहीं, आप ऐसे का ऐसे धनुष विश्वकर्मा ने बनाया, ये आप लीजिए। वो दोनों ने धनुष लिया और थोड़ी देर कौतूहल लीला किया, फिर विष्णु भगवान विष्णु की विजय हुई। तो शंकर जी ने अपना धनुष रखना नहीं चाहा, हमारे पांचवी छठी पीढ़ी के जनक देवव्रत को दिया था, और महाराज देवव्रत से ही हमारे पास पूजा के लिए आता है, और भगवान विष्णु का धनुष आगे चल के परशुराम के पास आता है। तो ये धनुष दो ऐसे इस धरती के ऊपर आए हैं। फिर कहते हैं महाराज जनक कि मेरी पुत्री कोई वीरज से मां के जर और आयु से पैदा हुई नहीं है, ये तो भूमि की पुत्री है। जब मैं यज्ञ के लिए भूमि का शोधन करके हल चला रहा था तो हल के नीचे लोहे के भाग को सीता कहते हैं, सीत कहते हैं, उससे ये प्रकट हुई सीता है। और ये छोटी सी बच्ची थी, घर में सफाई करते हुए इस धनुष को उठा लिया, और जब मैंने ये सुना कि इसने धनुष को उठा के नीचे रखा है, मैंने कहा ये सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है, इसका विवाह तो वहां करेंगे जो इस धनुष को प्रत्यंजा चढ़ा सकेगा। और बहुत से राजा महाराजा आए, पूरे भारत भूमि के राजकुमार आए, कोई इस धनुष को टस से मस नहीं कर पाया है। महाराज ये धनुष बहुत भारी है। आप कहते हैं ओ जनक, जनक जी विश्वामित्र कहते हैं बच्चों को देखने तो दो। तो आठ बड़े पहियों के अंदर बड़ी एक मंजूसा टैंक में रखा हुआ धनुष पेटी में, और कई काम करने वाले धक्का देते हुए हजारों पहलवान उसको ला के बीच में रखा है, उसका ऊपर का ढक्कन उठाया है, और रामचंद्र ने प्रणाम करके विश्वामित्र से आज्ञा मांगी है कि मैं इसको देख सकता हूं, जाके पास में खड़े हुए हैं। फिर देखने के बाद कहते कि मैं इसको उठा सकता हूं, अब तो सब देख रहे हैं कि उठेगा कैसे ऐसे, लेकिन उन्होंने तो उल्टे हाथ से ऐसे उठाया जैसे हाथी कोई गन्ने को उठाते हैं, और प्रत्यंजा चढ़ाने के लिए डोरी को कसा है और ऊपर का हिस्सा जैसे नीचे किया है, धड़ाम से बीच से धनुष टूटा है, और धनुष को टूटते ही ऐसा तुमल आवाज हुआ है चारों ओर से कि सारे मूर्छित हो चुके जनक जी और विश्वामित्र और लक्ष्मण को छोड़ के। वो तो सभा में इतने भयानक आवाज हुई है, ध्वनि हुई है। आज भी जनकपुर तो है, बिहार से आगे जाएंगे नेपाल में, एक भाग जनकपुर का हुआ करता था, बिहार में सीतामढ़ी जिसको कहते हैं, वहां से सीता का प्रकट्य हुआ, और जिस जगह से वो मिट्टी निकली थी लोग मिट्टी उठा उठा के अब इस हाल से बड़ा तालाब बन गया, तो वो जगह है सीतामढ़ी का, सीता का प्रकट्य स्थान। और वहां से 40-50 किलोमीटर दूर के ऊपर अंदर नेपाल में जनकपुर है, जहां महाराज जनक की राजधानी थी, तीन गेट हुआ करते थे ऐसे मानते हैं। सो जनकपुर, महाराज जनक कहते हैं अब जो धनुष टूटने की जो बात हुई तो इसका मतलब तो बड़ा प्रशंसा महाराज जनक को हुई, उन्होंने तत्काल दूत को भेजा है, और दूत तीव्रगामी घोड़े के ऊपर तीन दिन तीन रात चल के अयोध्या में आके पहुंचा है जनकपुर से। और जब ये समाचार महाराज दशरथ को मिला है तो उन्होंने दूत को बुलाया है, और दूत ने जब समाचार दिया था कि आपके दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण ऋषिवर विश्वामित्र के संग जनकपुर में पधारे थे, और उनके द्वारा बड़ा अद्वितीय कार्य उस धनुष जिसके ऊपर कोई प्रत्यंजय भारतवर्ष में चढ़ा नहीं पाया था उसके ऊपर चढ़ाया है, और उसके कारण महाराज ने आपको शुभ समाचार भेजा है कि उनकी सुपुत्री सीता का राम जी वरण कर चुके हैं। अरे महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हो गए और ये चिट्ठी बार बार जो वहां से आई थी शत्रुघ्न पढ़े तो फिर भरत पढ़े फिर माताएं पढ़े तो एक आधे घंटे में पूरे अयोध्या में ये पता लग गया कि राम जी के विवाह की तैयारी हो रही है। अभी बारात कब जाएगी पता नहीं, सभी अपने कपड़े बनाने बैग बनाने और पगड़ी साफ करने लग गए और सबने कहा कि अब तो तैयारी होनी है। और महाराज ऐसे वाल्मीकि रामायण में लिखा नहीं लेकिन भाव राज्य में कहते हैं कि जब महाराज जनक को ये महाराज दशरथ को ये शुभ समाचार मिला तो नौलखा हार उठा के उस दूत को दे दिया उपहार के रूप में जो ये शुभ समाचार लाया था। और दूत ने बड़े आदर से उस हार को सर के ऊपर लगाया और कहा महाराज हमने आपका दिया हुआ ये स्वीकार कर लिया लेकिन मैं इसको ले नहीं सकता हूं क्योंकि हमारी राज की कन्या आपके राज में विवाह के आ रही है और कन्या के घर का लेना ये हमारा धर्म नहीं है, हम उनको देते हैं उनसे लेते नहीं है। और ऐसे करके राह हार वापस रख दिया है। और बारात की तैयारी के लिए महाराज वशिष्ठ से पूछा है गुरुदेव मुहूर्त निकालिए। मुहूर्त बोला कल सुबह ही तैयार है। और तैयार मुहूर्त हो गया तो आगे बारात में कौन चलेगा? बोला आगे ऋषियों की सवारी जाएगी। स्वर्ण के रथ के ऊपर वशिष्ठ जी चढ़े हैं, वामदेव चढ़े हैं, मार्कंडे चढ़े हैं, जाबाली चढ़े हैं, ये सारे ऋषि आगे जा रहे हैं। कार्तिकेय ऋषि और इन सब ऋषियों की मंडली आगे जा रही है और पीछे बारात के अंदर स्त्रियां नहीं थी ऐसा है। और दशरथ जी महाराज ने अपना रथ तैयार किया है, पीछे वो चल रहे हैं। तो जहां से ये बारात जा रही है बहुत बड़ी भव्य बारात जा रही है। आज तक धरती के ऊपर विवाह का वर्णन जैसा रामचंद्र की बारात का है ऐसी बड़ी बारात किसी की गई नहीं है आज तक। और ऐसे वैभव के साथ विवाह भी किसी और अवतार का इतने बड़े जो है धामधूम से हुआ नहीं है। जहां से बारात जाए लोग आके पूछें दूल्हा कहां है। अरे बारात तो जा रही है दूल्हा तो दशरथ जी से पूछा दूल्हा कहां है, बोला दूल्हा तो पहले ही ससुराल पहुंच गया। अब बार बार जब लोग पूछें तो वशिष्ठ जी के पास आके कहते हैं दशरथ जी कि महाराज ये तो अब बार बार लोग पूछते हैं क्या बताएं दूल्हा कहां है, बगैर दूल्हे के बारात कैसे जाएगी। वशिष्ठ ने कहा फिर मैं आपको बता दूं ये हमारा भरत कुमार है बिल्कुल राम जैसा लगता है और ये शत्रुघ्न लक्ष्मण जैसा, इनको दूल्हा बना के ले चलते हैं, लोग फिर पूछेंगे नहीं देखेंगे दूल्हा जा ही रहे हैं। बोला बात तो आपकी ठीक है गुरुदेव, इनको दूल्हे का कपड़ा पहना भी दें और पगड़ी बांध भी दें लेकिन उधर शादी होगी राम जी की और कल भविष्य में कभी आपस में बैठ के कहेंगे कोई दोस्त इनको मित्र इनके कि गए थे दूल्हे बन के शादी हो गई उसकी तू तो वापस आ गया, तो इनको बड़ी आगे चल के ग्लानी होगी। वशिष्ठ जी कहते हमने कह दिया कि दूल्हा बनाओ तो दूल्हा बन के ही आएंगे, इनकी भी दुल्हन लेके आएंगे, आप इनको ही दूल्हा बना के यहां से कम। बार बार लोग बारात में पूछते दूल्हा कहां है, देखना तो दूल्हे को चाहते हैं सब। तो यहां से ये बारात जैसे जनकपुर के पास पहुंची है, महाराज जनक ने आके इनका अगवानी की है, स्वागत किया है, जानीवास में इसका निवास कराया है। पहले लोग ऐसे मिलने जाते थे आने वाले को, कम से कम वहां जाके मिलते थे, शहर से 2 किलोमीटर आगे मिलते थे, कहीं पूछना ना पड़े महाराज का घर कहाँ है कौन सी गली में जाना है, ये बहुत बड़ी परेशानी होती है। यही आजकल GPS इसकी जरूरत नहीं थी, वो पहले आ जाते थे लेने वाले अपने आप लेके जाते थे और बड़ा उनका जलपान करा के बैठते थे। ये तो अभी भी हमारे समाज में 20-25 साल पहले ये मर्यादाएं हुआ करती थी, अब तो ये आस्ते आस्ते समाप्त होती जा रही है। इसके बाद बहुत सुंदर क्या टाइम हो रहा है, हरे कृष्णा बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ड्रामा भी है, ड्रामा है, हाँ जी अच्छा जी। तो अब यहां ये बारात पहुंची है, दूल्हा पहले ही पहुंच चुका था, तो अब किसको सबसे ज्यादा तीव्रता है मिलने की, दशरथ महाराज को। मैं बारात से ज्यादा उनको राम लक्ष्मण को देखने की तीव्र इच्छा थी और राम लक्ष्मण को भी अपने पिता और गुरुजनों को देखने की इच्छा थी, लेकिन सीधे नहीं आए। विश्वामित्र जो जगह के प्रणाम किया, बोला गुरुदेव, गुरुदेव वशिष्ठ जी और पिता पधारे हैं, आज्ञा दें तो उनके दर्शन के लिए जाएं। अब तो विश्वामित्र धन्य हो गया कि मर्यादा कि पिता को सो मिलने जाने के लिए भी पूछने आए हैं, तो स्वयं विश्वामित्र भी चले हैं। अब यहां आपस में गुरु गुरुजन से मिले हैं, महाराज दशरथ और जनक मिले हैं, और बड़ा आनंद मंगल हुआ है। और कहा कि कल दूसरे दिन फिर मंगल कार्य की बात करेंगे। अब मंगल कार्य की बात में जब बैठे हैं तो विश्वामित्र जी कहते हैं, महाराज खीर ध्वज जनक, अच्छा इधर जब विवाह की बात होने लगी तो अपने कुल परंपराओं का समाचार दीजिए। तो महाराज दशरथ ने कहा वशिष्ठ जी हमारे कुल परंपरा बताएंगे। तो वशिष्ठ जी कहते इक्ष्वाकु वंश है, और इक्ष्वाकु वंश बहुत बड़ा प्रसिद्ध सूर्य वंश है, उसके अंदर महाराज अज के पुत्र ये दशरथ है, और दशरथ के ये पुत्र राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न है। और जनक महाराज ने कहा हमारे शतानंद नहीं, हम ही बताते हैं, हमारी परंपरा इसी आगे इक्ष्वाकु वंश के साथ निकला हुआ निमी महाराज का वंश है, और निमी महाराज के पुत्र मिथल, और मिथल का पुत्र जनक, वो जो जनक है पहला हमारा जनक था, उसकी पीढ़ी में देवरथ जनक जिसके पास ये धनुष आया, और 21 पीढ़ियों का मैं जनक हूं, मेरा नाम क्षीर ध्वज धनज है, जनक क्षीर ध्वज है, और मेरा दूसरा भाई कुश ध्वज है। दो मेरी कन्याएं हैं, एक तो सीता जिसका वर्णन अभी रामचंद्र कर रहे हैं, और दूसरी उर्मला मेरी कन्या है, और मेरी भाई की दो कन्या है मांडवी और श्रुतकृति। तब विश्वामित्र कहते हैं महाराज आपका भाई भी विवाह में आया है, अपनी कन्याएं भी उनकी लाया है, हमारा विचार है कि राम जी के विवाह के साथ लक्ष्मण को तो आप उर्मला दे ही दीजिए। तब वशिष्ठ कहते हैं मैं दूल्हा उधर से दो बना के लाया हूं, तो आप पगड़ी बांध ही दी है, तो खीर ध्वज आपके वंश की दोनों आपकी दो कन्याएं मांडवी भरत के लिए और श्रुतकृति शत्रुघ्न के लिए। अब तो महाराज जनक कहते हैं कि आज निमी वंश और इक्ष्वाकु वंश के बीच में सेतु बन रही है, ये तो महान दो वंशों का आपस में मिलन हो रहा है। अब आप अपना अपना पूजा का कार्य कीजिए, पितरों की पूजा कीजिए, ताकि विवाह में पितर खुश होते हैं, ताकि पीढ़ी चलती है आगे, तो पितरों को पिंडदान मिलता रहता है, और फिर नंदी मुखादिश जो सेवा है श्राद्ध करके, और दूसरे दिन ये चार लड़के और चार लड़कियों का सुंदर मंडप बना है विवाह का। और ये अभी कोई जनकपुर जाएगा दर्शन करने, आप में से कोई गया है जनकपुर? हम जनकपुर एक बार गए हैं दर्शन करने के लिए, अभी उधर टिकट रखा है नेपाल में है, कुछ 2-5-10 रुपया टिकट है अंदर जाने का। हम तो वहां गए थे, हमको एक बात है कभी कभी आपको सुनाते होंगे, वहां का महंत जो है, किसी ने हमको कहा था अयोध्या का संत, वो महंत जो है आज भी अयोध्या के महंत उस मंदिर के मालिक हैं जो जनकपुर का मंदिर है। जैसे जैसे गंगा सागर का मंदिर है तो बंगाल में, लेकिन है महंत उधर भी अयोध्या का, क्योंकि ये पुराना महाराज सागर, ये तो सूर्य वंश की ये पूरी धरती सूर्य वंश को ब्रह्मा जी ने दी थी। तो वो महाराज जो थे उसका हमको परिचय दिया था, हम उसके पास जाके बैठे थे, तो हम आपको कई बार बताए, वो महाराज हमारी तरह बहुत सेहतमंद थे, उसने हमको एक बात कही थी कि नगर का सेठ मंदिर का गेट और साधु का पेट बड़ा होना चाहिए। वो हमको आजकल या ये जनकपुर में हमको उसने बताई थी महंत ने कि नगर का गेट बड़ा होना चाहिए कि आदमी बड़ी गाड़ी अंदर आ सके सामान के साथ, और नगर का सेठ भी बड़ा होना, किसी का काम पड़े तो कुछ ना कुछ दे, और साधु का पेट बड़ा होना चाहिए। तो वो हमको ले गया था उधर, विवाह मंडप बना हुआ है, तो महाराज दशरथ बैठे हैं, वशिष्ठ जी और वामदेव ये आसनों पे सब बैठे हैं, और महाराज जनक और उनकी पत्नी सुनैना और सीता जी और राम जी और ये सब कुमारों को वो बहुत सुंदर एक झांकी बना के वहां रखी है, सब लोग जाके ये विवाह स्थल देखते हैं, उसका दर्शन करते हैं। वहां से और आगे जाते हैं तो धनुष कोटी नाम का एक तीर्थ है, जहां टुकड़ा आधा धनुष का जाके गिरा था, उतना दूर जनकपुर से उतना दूर वो धनुष गिरा था, वो धनुष धरती के ऊपर पत्थर के रूप में आज आधा दिख रहा है, वो पूजनीय स्थान है, उधर जाके उसका दर्शन करते हैं। और एक टुकड़ा एक तालाब है उसके अंदर कहते हैं, अब तो हमको भी बहुत साल हो गए गए को, फिर भी कभी जाना चाहिए, सीतामढ़ी जनकपुर ये सब स्थानों का दर्शन करना चाहिए। तो अब ये मंगलकारी विवाह का हो गया, विवाह के मंगलकारी तो वाल्मीकि जी के यहां स्वयंवर का वर्णन नहीं है। कई बार आए थे राजा, प्रयास करके चले गए थे, और यहां परशुराम के आने का भी वर्णन नहीं है। कल परशुराम से मुलाकात करेंगे, आज यहां सुख से विवाह होने दीजिए। और कुछ महात्मा तो राम कथा जन्म और विवाह तक ही करते हैं, इससे आगे करते ही नहीं है। इसके बाला बड़ा दुख वाली बात हमको चाहिए ही नहीं। और एक ऐसे महात्मा थे अयोध्या में, एक ऐसे महात्मा थे, कहां थे, बंगाल में कहीं थे, अयोध्या में थे, कथा करते थे केवल भगवान के जन्म की और भगवान के विवाह की। एक दिन कोई और कथाकार आया, उसने भगवान के वनवास की बात की, वो रोने लगे, तो रोना बंद नहीं हुए। एक महीना, दो महीना, छह महीना, बारह महीना हो गया, पागल हो गए और वहां से वृंदावन आ गए। और उस वक्त में रूप सनातन गोस्वामी ये सब उस वक्त में थे, भगवान दास उसका नाम था, अली भगवान दास कहते थे। वो उसको कहते, रो रहा है ये, पागल नहीं है ये, तो भगवत प्रेम में रो रहा है। तो पता लगा, तो उन्होंने बहुत एक सुंदर लीला किया, झांकी दिखाया, जैसे ड्रामा दिखा रहे ना, उस ड्रामे के अंदर राम जी का जो लीला, राधा कृष्ण की लीला हो रही थी, वहां झांकी राधा कृष्ण की हो रही थी। भगवान कहते हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूं, मुझे कोई संकट नहीं है। उसने देखा, उसने रोना बंद कर दिया, और फिर तो राधा कृष्ण के ध्यान में वहां मगन हो गए। तो ऐसे तो हमारे पास भी, कुलशेखर महाराज ने जब कथा में सुना के 14,000 राक्षस लेके खरदूषण आए हैं, ये कथा कभी नहीं बताता था पंडित। आज जो बताई तो महाराज कहता, सेना लेके आओ, रामचंद्र अकेले हैं, हमको जाना है। वो तो सचपच सेनापति ने कहा, सेना लेके आ जाओ। राजा उस भाव में आ गया कि कहीं साक्षात कि अभी अभी युद्ध हो रहा है, राम जी अकेले कैसे हो सकते, और सेना खड़ी हो गई। बुद्धिमान मंत्री था, सामने से एक आदमी को घोड़े पे भेजा के बोलो महाराज को, बोलो भाई सेना है आगे, महाराज है, सेना जा रही है। उसने कहा, महाराज राम जी की विजय हो गई, सब राक्षस मारे गए, अब जरूरत नहीं है सेना की। वो सेना वापस लौट आई। अब फिर आया कि वो राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए रामचंद्र लंका में प्रवेश किया है, तो ये एकदम समुद्र के अंदर तलवार हाथ में लेके रवाना हो गए कि अकेले रामचंद्र कैसे होंगे। तो भगवान ने आकर समुद्र में हाथ दे के उसको कहा, नहीं सब कुछ शांति हो गई। तो बहुत से कथाकार भाव में बस राम राम के जन्म और विवाह की कथा करके बाकी कथा शुरू करेंगे तो राज के राज तिलक तक पहुंचानी पड़ेगी। भगवान को वन में नहीं छोड़ना है। हरे कृष्णा, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, राय गौर प्रेमानंदे। धन्यवाद।